सच्चिदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा
हरे
Rama, 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 Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jai Jagannath, Jagannath, Baladev Subhadra. Jai Gauranita, Jai Gauranita, Gauranita, Jai Gauranita. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन डीवीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 57 न यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मः न यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मनः न यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मनः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मनः न यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य दृष्टुरात्मनः न यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य रस्य दृष्टुरात्मनः मयस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते भगवान का जन्मनः जन्म लेना हेतु कोई कारण है कर्मणः या कर्म करने का वा अथवा महीपते हे राजा परीक्षित आत्ममायां पतित आत्माओं के लिए परम अनुग्रह विना बिना या रहित ईशस्य परम नियंता का परस्य भगवान का जो भौतिक संसार से परे हैं दृष्टुहु परमात्मा का जो हर एक के कर्मों के साक्षी हैं आत्मनः हर एक के परमात्मा का अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद हे महाराज परीक्षित भगवान के प्राकट्य तिरोधान या कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है कोई अन्य कारण नहीं है परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं फलतः ऐसा कोई कारण नहीं जो उन्हें प्रभावित करता हो यहाँ तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं तात्पर्य इस श्लोक में भगवान तथा एक सामान्य जीव का अंतर बताया गया है सामान्य जीव को अपने विगत कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है कर्मणा दैवनेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्तये जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रकट नहीं हो सकता प्रत्युत उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार माया द्वारा उस पर थोपे गए शरीर को स्वीकार करना होता है जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है यंत्रारूढानि मायया यह शरीर एक प्रकार का यंत्र है जिसे माया ने भगवान के निर्देशन में जीव को प्रदान किया है अतः जीव को अपने कर्म के अनुसार माया द्वारा प्रदत्त शरीर को स्वीकार करना चाहिए कोई स्वतंत्र रूप से यह नहीं कह सकता कि मुझे इस तरह का या उस तरह का शरीर दिया जाए माया जो भी शरीर प्रदान करती है मनुष्य को वही स्वीकार करना पड़ता है ऐसी ही सामान्य जीव की स्थिति है किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे पतित आत्माओं पर अनुग्रहवश ऐसा करते हैं जैसा कि भगवद्गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे मैं साधुओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। निसंदेह उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वे भगवान हैं। हर व्यक्ति उनके अधीन है, किंतु वे किसी अन्य के अधीन नहीं हैं। जो मूर्ख लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं कि कृष्ण के समकक्ष हैं या कृष्ण बन सकते हैं, उनकी हर तरह से निंदा की जाती है। कोई न तो कृष्ण के तुल्य है न उनसे बढ़कर, इसीलिए उन्हें असमौध्व कहा गया है। विश्वकोश के अनुसार माया का प्रयोग मिथ्या अहंकार के रूप में किया जाता है और दया के रूप में भी। सामान्य जीव के लिए वह जिस शरीर में प्रकट होता है वह एक प्रकार से दंड है, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी यह दैवी शक्ति जो तीन भौतिक गुणों से युक्त है उसे पार कर पाना दुष्कर है। लेकिन जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो कृष्ण माया का अर्थ होता है भक्तों तथा पतित आत्माओं पर कृष्ण की कृपा या अनुग्रह। भगवान अपनी शक्ति से किसी का भी उद्धार कर सकते हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्येवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में भागवत कक्षा में आप सब आए हैं और आप सबके स्वागत के लिए राधा गिरिधारी जी ने आज विशेष रूप भी ग्रहण किया है। राधा रानी मणिपुर जाकर आई हैं ऐसा लग रहा है। भागवत का ये अध्याय नवे स्कंद का श्री कृष्ण का गुणगान कर रहा है। पिछले अध्यायों में और इस अध्याय के प्रारंभ में भी वंशों का वर्णन हुआ और अब वंशों का वर्णन करते करते जब वसुदेव और देवकी का वर्णन कर रहे हैं तो फिर उनके आठ पुत्रों का भी वर्णन किया, जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन भी आता है क्योंकि वो भी देव की पुत्र हैं। और श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए उनकी स्थिति का वर्णन अब इन श्लोकों में हो रहा है। श्री कृष्ण कौन हैं? वैसे तो श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही भगवान की स्थिति का वर्णन कर दिया गया है और यही भागवत का विषय है। वैसे शुकदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद में भागवत के 10 प्रमुख विषयों का वर्णन किया, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्थया ईशनु कथा मनवंतर मुक्ति निरोध आश्रय। तो ऐसे कहा कि ये 10 विषय हैं भागवत के, लेकिन फिर भी प्रमुख विषय आश्रय है या प्रमुख विषय श्री कृष्ण का गुणगान है। भागवत की रचना केवल श्री कृष्ण के गुणगान के लिए हुई है, हम सबको ये बतलाने के लिए कि श्री कृष्ण कौन है। भगवद गीता श्री कृष्ण के द्वारा कही गई और भागवत श्री कृष्ण का विषय है कि श्री कृष्ण कौन है और वो कैसे भगवान हैं। तो यहाँ भी इसी बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में जीवों के और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हैं। भगवान स्वराट हैं। भागवत का पहला श्लोक ही उन्हें ये कहकर संबोधित करता है, जन्मादिस्य यतः, जिनसे सब कुछ आता है और जो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, कोई बाध्य नहीं कर सकता उन्हें। आजकल कई बार लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, अपने आप को कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति घोषित करते हैं, लेकिन स्वराट केवल भगवान है, पूर्ण स्वतंत्र केवल भगवान है, हम में से कोई भी नहीं है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में इस बात को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये शरीर कर्मों से लेने पड़ते हैं, बाध्य होकर लेना पड़ता है, और हम सब ये जानते हैं। हमें चुनाव करने के लिए अनुमति नहीं मिली थी, शरीर ग्रहण करने के पहले हमें ये चुनाव नहीं करने दिया गया था कि हम कहाँ पर प्रकट होंगे, हम किस देश में उत्पन्न होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा गोरा शरीर होगा या काला होगा, हम अमीर होंगे या गरीब होंगे। इतना ही नहीं, हमें तो ये भी स्वतंत्रता नहीं मिली कि आपका नाम क्या होगा। छोटा सा बालक होता है, माँ बाप उसका नाम रख देते हैं, जीवन भर उसको स्वीकार करना पड़ता है, है कि नहीं सत्य? क्या आप लोगों ने अपने माँ बाप से कहा था ये नाम ठीक नहीं है, कोई और ढूंढो जरा, और थोड़ा वो वेबसाइट में जाओ, थोड़ा सा सर्च करो, ऐसा नहीं कहा ना? माँ बाप ने कहा कल से तुम्हें इस तरह बुलाया जाएगा, स्वीकार है। ऐसे ही माया है, ये प्रकृति है जो बाध्य करती है, अगला जन्म इस तरह का मिलेगा, स्वीकार है। हाँ, एक दृष्टि से हम लोग समर्पित भक्त हैं माया के, भगवान के नहीं, क्योंकि माया जैसा कहती है हम वैसा करते हैं। माया कहती है कि पशु शरीर में चले जाओ, स्वीकार है, मनुष्य शरीर में जाओ, स्वीकार है, भारत में जन्म लो, स्वीकार है, अमेरिका में जन्म लो, स्वीकार है, समर्पित है, पूर्ण समर्पण। लेकिन एक ही गलती है कि हमने समर्पण माया को किया है, और हमारा समर्पण उनके स्वामी श्री कृष्ण को होना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण ही केवल पूर्ण रूप से स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, हम सब बद्ध हैं। भगवद्गीता में आसुरी स्वभाव का वर्णन हुआ है, और आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो कहते हैं ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान, सुखी। ये जो भी मानता है भगवान कहते हैं आसुरी स्वभाव है, क्योंकि हमारी असली स्थिति क्या है, ईश्वरो हम नहीं है, हम तो दासो हम कहना चाहिए हमें, दासो हम। आसुरी स्वभाव के व्यक्ति कहते हैं ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान, सुखी, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, दासो हम, अहम रोगी, बद्धो हम, बलहीन, दुखी, ये हमारी स्थिति है। दास हैं माया के, इच्छाओं के, इंद्रियों के, ईश्वर नहीं है, स्वामी नहीं है, स्वामी केवल एक है श्री कृष्ण। हम तो दास हैं, हमारी मूल अवस्था भी दास की है और बद्ध अवस्था भी दास की है। मूल अवस्था श्री कृष्ण के दास की है और बद्ध अवस्था माया के दास की है। तो यहां बड़े सुंदर तरीके से प्रभुपाद समझा रहे हैं, ये अंतर है हम में और भगवान में, हम में से कोई भगवान बन नहीं सकता, ये धोखा है। भगवान बना नहीं जाता, भगवान कोई पद नहीं है जो हर 5 साल में इलेक्शन के बाद जीत लिया जाए। बाकी सारे पद हैं, ब्रह्मा पद है, गणेश पद है, इंद्र पद है, आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत पुण्य करेंगे तो हो सकता है इंद्र बन जाए, और भी पुण्य किया कई जन्मों तक अगर बड़ी अच्छी तरह से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया तो ब्रह्मा भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये सारे पद हैं, लेकिन श्री कृष्ण ये कोई पद नहीं है, भगवान कोई पद नहीं है, 3 गुणों के परे हैं भगवान, जिनके अंश से भागवत में वर्णन है, माता देवकी वर्णन करती हैं, यस्यांश अंश सभागेन विश्वोत्पत्ति लयोदय। कौन है वो कृष्ण? यस्यांश, जिनके अंश से, यस्यांश अंश सभागेन, जिनके अंश के भाग से विश्वोत्पत्ति लयोदय, विश्व की उत्पत्ति होती है, विश्व को बनाए रखते हैं और विश्व का संहार हो जाता है, ये श्री कृष्ण हैं। और कौन है अंश के भाग? आचार्य समझाते हैं, यस्यांश अर्थात महाविष्णु, जिनके अंश हैं महाविष्णु, और उनका अंश कौन है? माया देवी, और उनके भाग क्या हैं? 3 गुण। तो 3 गुणों से ये प्रकृति प्रकट होती है, ये भौतिक जगत आता है और चला जाता है, थोड़े समय रहता है फिर चला जाता है, लेकिन श्री कृष्ण वो स्वामी हैं, स्वराट हैं, केवल मोह में डालते हैं, मुह्यन्ति यत् सूरयः, देवताओं को भी मोह में डाल देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण हैं। और 3 गुणों के परे हैं, देवों के देव हैं। जब भगवान कौशल्या देवी के सामने प्रकट हुए श्री रामचंद्र के आविर्भाव रामनवमी के दिवस पर, तो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और उस समय कौशल्या देवी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, और अपनी प्रार्थनाओं में वो कहती हैं, देव देव नमस्ते स्तु शंख चक्र गदाधर परमात्मा च्युतोऽनंत पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तम। कौशल्या देवी कहती हैं कि हे भगवान, जो आप मेरे सामने खड़े हैं, देव देव नमस्ते स्तु, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप कौन हैं? देव देव, देवताओं के भी देव हैं। अहम आदिर हि देवानाम, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। तो देव देव नमस्ते स्तु शंख चक्र गदाधर, आप मेरे सामने शंख चक्र गदाधर के गदा धारण करके प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदाधर, लेकिन आप हैं कौन? परमात्मा चितोनंत, आप परमात्मा हैं, सभी जीवों के हृदय में स्थापित हैं, स्थित हैं, परमात्मा अच्युत, आप अच्युत हैं, आपका कभी पतन नहीं होता, बाहरी दृष्टि से दिखता है कि आप एक मछली का रूप ले लिया है, आपने एक शूकर का रूप ले लिया है, आप सारथी बन गए हैं, लेकिन अच्युत, आपकी स्थिति कभी नीचे नहीं होती, आपका कभी पतन नहीं होता, जीवों का पतन होता है, बद्ध जीव माया में बारंबार पतन होता है, लेकिन भगवान अच्युत हैं, उनकी स्थिति सदैव दिव्य बनी रहती है, चाहे वो अर्जुन का रथ चलाएं, चाहे वो मत्स्य रूप में आए, चाहे शुकर रूप में आए, वो दिव्य हैं, ये भगवान हैं। अच्युतो अनंत, आप अनंत हैं। अनंत का अर्थ क्या होता है? कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान अनंत हैं। नहीं, अनंत मतलब भगवान की करुणा अनंत है, भगवान का रूप तो है ही अनंत, लेकिन फिर भी रूप है, भगवान निराकार नहीं है। और जब अनंत कहकर संबोधित किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि भगवान के ऐश्वर्य अनंत हैं, भगवान की करुणा अनंत है, इसीलिए अनंत कहते हैं उन्हें। कोई सीमा नहीं है भगवान की करुणा की। पूर्ण स्वम पुरुषोत्तम, आगे कहती हैं आप ही केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और अपनी प्रार्थनाओं में वो आगे कहती हैं कि आप इन तीनों गुणों के परे हैं, लेकिन फिर भी करुणावश, जैसे यहां प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, करुणावश आप मेरे पुत्र बन रहे हैं, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो ये करुणा है भगवान की कि भगवान यहां आते हैं, आत्म मायाम, अपनी करुणा से यहां पर आते हैं। नहीं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है इस भौतिक जगत में, इस स्थान में आने की। बड़ा गंदा स्थान है ये जहां हम लोग रहते हैं, आप कितना ही साफ कर लीजिए, वो अच्छी भली कोई मशीन लाकर उसको घर को साफ कीजिए, वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर लगाइए, लेकिन वैक्यूम क्लीनर से ये अनर्थ खींचे नहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत बाहर की गंदगी दूर हो जाती है। तो हम लोग जिस स्थान में हैं वो बहुत ही गिरा हुआ, बहुत ही पतित, बड़ा ही घृणित, बड़ा ही गंदा स्थान है। मल में पड़े हुए कीड़ों के समान हमारी अवस्था है, लेकिन हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे मल का कीड़ा भी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है, वो कभी नहीं सोचता कि क्या स्थिति है मेरी, मैं मल में पड़ा हुआ हूं, कोई भी आकर मुझे पांव रख देता है, मेरे ऊपर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नहीं, वो तो बहुत श्रेष्ठ मानता है अपने आप को। ऐसे ही हम सब हैं, इस भौतिक जगत में हैं, मल में पड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन भगवान की करुणा, वो ऐसे स्थान में भी आते हैं हम सब के लिए। तो ये भगवान की स्थिति है, भगवान दिव्य हैं, और उनकी इच्छा से इस श्लोक में बात बता रहे हैं कि इच्छा से भगवान आते हैं, कोई बात भी नहीं करता उनको। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तोमार इच्छाए विश्व सृजन संहार, आचार्यों ने गाया है, भजन लिखा, आप सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं श्री कृष्ण, और आपकी इच्छा से विश्व का सृजन होता है, संहार होता है। तब इच्छा मतो ब्रह्मा कोरे न सृजन, तब इच्छा मतो विष्णु कोरे न पालन, तब इच्छा मतो शिव कोरे न संहार, तब इच्छा मतो माया सृजे कारागार। श्री कृष्ण की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तब इच्छा मतो विष्णु करे न पालन, आपकी ही इच्छा से ये विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। तब इच्छा मत शिव करे न संहार, और जब ये विश्व का संहार होता है तो वो शिव जी करते हैं, वो भी आपकी इच्छा से। और तब इच्छा मत माया सृजे कारागार, ये जो जेल है जिसमें हम लोग हैं, ये माया देवी ने सृजन किया है। सृजन यानी बना दिया है, बहुत सुंदर जेल बनाया है माया देवी ने, कोई दीवारें नहीं है, स्वतंत्र, जाना चाहें तो चले जाएं। लेकिन माया ने सृजन तो किया कारागार, साथ साथ हमारे हृदय में भी ये कारागार बना दिया, ऐसा कारागार जो हमें ये आशा दिलाता है कि यहीं रहकर सुखी रहोगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कारागार का भाव है। तो कोई दीवारें नहीं है कारागार की, लेकिन हम ऐसे कैदी हैं कि जाते ही नहीं है बाहर, इच्छा भी नहीं करते बाहर जाने की, ये माया है। हम सोचते हैं हम इस कारागार में बड़े सुखी रह सकते हैं, तो माया ने ये बनाया है। तब इच्छा मत माया सृजे कारागार, माया की सृष्टि है ये कारागार और हम बड़े प्रसन्न हैं इसमें, बड़े आराम से रह रहे हैं। तो हमें इच्छा करनी चाहिए भगवान की प्राप्ति की। हमारा सारा अस्तित्व इच्छा पर आधारित है। अगर हम भगवान से परे जाने की इच्छा करते हैं तो फिर बंधन आता है। अगर हम श्री कृष्ण के निकट जाने की इच्छा करते हैं तो मुक्ति आती है। सब कुछ इच्छा पर आधारित है। भगवान भी इस जगत में इच्छा से आते हैं और हम लोग इस जगत के बाहर भी अपनी इच्छा से ही जाएंगे। इच्छा से ही आए हैं, इच्छा से ही जाएंगे। इसलिए इच्छाओं को शुद्ध करना चाहिए। अभी हमारी इच्छाएं अशुद्ध हैं, अभी हम बंधे हुए हैं, कृष्ण की कृपा को देख नहीं रहे हैं। भगवान इसीलिए आते हैं। भगवान के आने का एक कारण ये भी है कि वो हम सबको फिर से वापस धाम में ले जाएं। लीला करने तो आते ही हैं, लेकिन हमें भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है सीता देवी का। सीता देवी रावण की लंका में बंद हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, आए हैं, और सीता देवी इंतजार कर रही हैं श्री रामचंद्र का कि कब वो आए और उन्हें लेकर जाएं। तो आचार्यों ने इस प्रसंग पर बड़ी सुंदर टिप्पणी की है। वो कहते हैं कि सीता हम सबके प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो जीव हैं, जीव के प्रतिनिधि हैं। वैसे सीता देवी जीव नहीं है, वो तो शक्ति है भगवान की, लेकिन यहाँ जीव का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे हम सब इस भौतिक जगत में आकर बंद गए हैं, ऐसे ही सीता देवी रावण की लंका में बंद थी। तो रावण की लंका ये भौतिक जगत है। और कैसे आई थी सीता देवी, क्या खींच लाया था उन्हें, एक मृग, मारीच। वो सच्चा मृग भी नहीं था, मायावी मृग था। बड़ा सुंदर लग रहा था, बड़ा आकर्षक लग रहा था। इच्छा हो गई सीता देवी की कि मुझे वो मृग चाहिए, और भगवान को भेज दिया, जाइए आप। तो भगवान से दूर होने का कारण माया के प्रति आकर्षण। तो ऐसी इच्छाएं, ऐसी भौतिक इच्छाएं हमें बनाए रखती हैं, लेकिन सीता देवी ने क्या किया, इंतजार किया श्री रामचंद्र का। ऐसे ही हम सबको इंतजार करना चाहिए श्री कृष्ण की कृपा का, कि वो आएगी एक दिन कृपा। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी, लेकिन इंतजार करना चाहिए। और हनुमान जी जब आए और उन्होंने कुछ वाक्यों को, वचनों को कहा, जिसको सुनकर सीता देवी बड़ी संतुष्ट हुई, उन वाक्यों की तुलना शास्त्र के वचनों से की जाती है। और फिर अंत में उन्होंने अंगूठी दी, और अंगूठी की तुलना मंत्र से की जाती है। अर्थात हम सब इस जगत में हैं, और आध्यात्मिक जगत से, भगवान के पास से भगवान अपना दूत भेजते हैं, जैसे हनुमान जी को भेजा, जो आकर हमें भगवान की ही अंगूठी अर्थात भगवान के नाम का मंत्र प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये निर्भर करता है हमारी इच्छाओं पर। और इच्छा क्या होनी चाहिए जीव की, हमें क्या इच्छा करनी चाहिए, भागवत बताता है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। कोई और इच्छा नहीं, काम, काम मतलब इच्छा, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, हमारी इच्छा इंद्रिय भोग की नहीं होनी चाहिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, एक ही इच्छा, एक ही जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हम कौन हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, और इस संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। भक्तों से विनती है अपने मोबाइल्स बंद रखें, हम प्रवचन के पहले वो जब प्रणति इत्यादि बोलते हैं तो साधारणतः अब आजकल एक और नया बोलना पड़ता है, मोबाइल बंद रखने वालों की जय, तो वो हम बोलना भूल गए। तो कृपया अपने मोबाइल बंद रखिए, ये मंदिर है, भगवान के सामने ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान से ज़्यादा आवश्यक कुछ और नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि भगवान से भी ज़्यादा आवश्यक कोई चीज़ है तो कृपया बाहर जाकर बात कीजिए, लेकिन मंदिर में यहाँ केवल श्री श्री राधा गिरिधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौ नेता, इनको महत्व देना चाहिए। जब हम कथा में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो इस माया के खिलौने को बाहर छोड़ कर आना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए, ताकि कम से कम थोड़ा समय तो माया से दूर रह सकें। नहीं तो क्या जीवन है हमारा, 24 घंटे माया में रहते हैं। प्रयास करना चाहिए थोड़ा समय श्री कृष्ण पर ध्यान कर सकें, और विशेष करके भक्तों को मंगल आरती में, गुरु पूजा में, भागवत में, ये खिलौने को बाहर रखना चाहिए। ये कुछ नहीं है, माया का खिलौना है। हमें ये एहसास दिलाता है कि कृष्ण कथा से भी महत्वपूर्ण कोई चीज है, मुक्ति से भी महत्वपूर्ण कोई चीज है। ये केवल मोबाइल याद दिलाता है, चलो मुझे जाना है, कुछ करना है। इसलिए थोड़ा सा समय श्री कृष्ण को देना चाहिए पूर्ण रूप से। तो ये श्री कृष्ण की अवस्था है, ये उनकी स्थिति है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, हमें अपने कार्य कैसे करने चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अब हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हमें जानना चाहिए हम कौन हैं, हमारी क्या अवस्था है। प्रयास करना चाहिए, इच्छाओं को बदलना चाहिए, नहीं तो केवल हम इस जगत में कष्टों में फंसे रहेंगे। अपनी बुद्धि को अगर हम कृष्ण में नहीं लगाएंगे तो फिर बाकी स्थानों पर लगकर ये हमारे बंधन का कारण बनेगी। भीष्म देव जब बाणों की शैया पर थे तो उन्होंने बहुत सा ज्ञान दिया, और जब ज्ञान दे चुके समय आया अपने देह त्याग का, तो भीष्म देव ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। 11 श्लोकों में उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मति को आप में लगा रहा हूं, मति रूपकल्पतः, अपने जितनी मेरी बुद्धि है, जो मेरी चेतना है, अब मैं आप में लगाना चाहता हूं। बहुत मैंने बोल लिया, बहुत कुछ कर लिया जीवन भर, बस अब आप में बुद्धि लगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भीष्म देव की एक कन्या थी, एक पुत्री थी भीष्म देव की, ऐसे तो ब्रह्मचारी थे लेकिन एक पुत्री थी, जिसका विवाह उन्होंने श्री कृष्ण से किया। कौन पुत्री थी? उनकी बुद्धि। आप लोग आश्चर्य में मत पड़िए कि क्या बात है, भीष्म के बारे में सुना नहीं कभी ऐसे। उनकी पुत्री थी उनकी बुद्धि, और उसका विवाह उन्होंने श्री कृष्ण से कर दिया। तो ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को भी विवाह करना चाहिए, सन्यासियों को भी करना चाहिए, लेकिन भगवद गीता भागवत से श्री कृष्ण को अपनी बुद्धि समर्पित करनी चाहिए। तो ऐसे अगर हम बुद्धि श्री कृष्ण में लगाते हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन का उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमें कैसे एक भक्त का जीवन जीना चाहिए, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि ये सब जो दिख रहा है ये सब चले जाने वाला है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, चलतः चित्तम चलतः वित्तम चलतः जीवन यौवनम चला चलम इदम सर्वम भक्ति यस्य सजीवति। ये जो सब हम लोग देखते हैं, चलतः चित्तम, हमारा जो चित्त है, जो हमारा हृदय है, जो हमें कई चीजों की ओर आकर्षित करता है, चलतः बहुत चंचल है, एक स्थान पर नहीं रहता, चलतः चित्तम चलतः वित्तम, हमारा धन हमारा ऐश्वर्य कितने समय रहने वाला है हमारे पास। हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया, मैं बहुत महान हो गया, मेरे पास धन है, संपत्ति है, मान सम्मान है, चलतः थोड़े समय के लिए है, फिर समाप्त हो जाता है। चलतः चित्तम चलतः वित्तम चलतः जीवन यौवनम, ये हमारा जो जीवन है, ये युवा अवस्था है जो हमें बहुत आकर्षक लगती है। जब हम युवक होते हैं तो बूढ़ों की ओर देखकर हम लोग जरा नीची नजरों से देखते हैं कि अरे ये बूढ़ा है, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, युवक हूँ। भूल जाता है कुछ ही साल बाकी है, कुछ ही साल हैं, फिर आप उनके स्थान पर होगे और आपके स्थान पर कोई और होगा। चलतः जीवन यौवनम, अंततः तो जीवन भी चले जाने वाला है, कितने समय रहने वाला है। लेकिन देखिए ये माया है कि हम लोग नहीं सोचते। आप में से कितने लोग सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हाँ आज मैं जीवित हूँ, मरा नहीं, रात को सोया था, क्या पता जागता ही नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है आज मैं जीवित हूँ। या फिर सोते समय भगवान को धन्यवाद देते हैं कि अच्छा हुआ एक दिन। वैसे लोग जन्मदिवस मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, वो कहते हैं कि एक साल निकल गया तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। दरअसल खुशियाँ केवल भक्त मना सकते हैं, हैप्पी बर्थडे केवल भक्तों का हो सकता है। किस लिए? कि वो प्रसन्न होते हैं कि एक साल और श्री कृष्ण की सेवा में मैंने निकाल दिया। बाकी तो केवल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, उनका क्या हैप्पी बर्थडे है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी पर्वत की ऊंची चोटी है और वहां से डर स्वाभाविक है, व्यक्ति मरने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा उसको कोई धक्का मार रहा है और पास आ गया, और प्रसन्न होता है, हैप्पी बर्थडे, और पास आ गया, और हैप्पी बर्थडे, और पास आ गया, और मनाते हैं। लोग 60-60 साल के हो जाते हैं तो जन्मदिवस मनाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं जन्मदिवस मनाते हैं। अरे वो पूरा अभी चोटी पर आ गया, बस जरा सा फूंक मारना है, नीचे गिर जाएगा, लेकिन हैप्पी बर्थडे। इसलिए हैप्पी तो केवल भक्त हैं, प्रसन्न तो केवल भक्त हैं, हर क्षण भगवान की सेवा में है, इसीलिए उनका जन्मदिवस, इसीलिए हम लोग प्रभुपाद का आविर्भाव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भक्त हैं, पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए है, तो ऐसे भक्तों को आनंद होता है कि हाँ और समय बीत गया सेवा में। तो इसीलिए अपना पूरा समय हमें भगवान को देना चाहिए। तो कैसे हम भक्त बन सकते हैं, क्या हमें कुछ कार्य करने चाहिए जिससे हम भगवान के भक्त बन सकें? सबसे पहला चीज, हमें अपने कर्तव्यों को बड़ी शुद्धता से और ईमानदारी से निभाना चाहिए, प्रामाणिकता से निभाना चाहिए। ये पहली योग्यता है भक्त बनने की। हमें जो सेवा दी गई है, जो कर्तव्य दिया गया है, उसको बड़ी प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, शुद्धता से निभाना। आजकल हमारा जीवन शुद्ध नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, बाहर जो चीजें मिलती हैं वो भी शुद्ध नहीं है, इसीलिए भक्त बाहर का कुछ ग्रहण नहीं करते। आशा करते हैं आप लोग ऐसा करते होंगे। सब कुछ अशुद्ध है, हमारा वातावरण, हमारा जीवन, हमारी इच्छाएं, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। शुद्ध मन से शुद्ध चीजें प्रकट होती हैं। ब्रजलीला में भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा क्या है? भगवान के मन से निकली हुई गंगा, इसीलिए मानसी गंगा कहते हैं। और क्योंकि भगवान के मन से निकली, शुद्ध स्थान से निकली, इसीलिए लोगों को शुद्ध करती है। तो इस जैसे भगवान के मन से निकली हुई गंगा सभी लोगों को, सारे जगत को पावन कर सकती है, उसी तरह शुद्ध भक्त के हृदय से निकले हुए विचार हम सबके जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के शुद्ध हृदय से निकली हुई गंगा है। जो पावन कर रही है हम सब, और इसीलिए ऐसी गंगा में स्नान हमें सदैव करना चाहिए। तो जब हम अपने कार्य, अपने कर्तव्य बड़ी प्रामाणिकता से श्रील प्रभुपाद को समर्पित होकर करते हैं, तब भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रामाणिकता चाहिए हृदय में, धोखा नहीं। हम सब बचपन से अब तक धोखा देते आए हैं। छोटा सा बालक धोखा देता है, स्कूल नहीं जाना, कहता पेट दर्द हो रहा है, और जब स्कूल का समय हो जाता है तो खेलने भाग जाता है, पेट दर्द सब समाप्त हो जाता है। बचपन से धोखा ये भरा हुआ है यहां पर। वैसे भी भगवान को धोखा दिया है हमने जन्म लेते ही। भक्ति विनोद पर बहुत सुंदर भजन में कहते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विद व्यथा जननी जठरे। जब मैं मां के गर्भ में था, आपने एक बार दर्शन दिया था मुझे, देखा दिया प्रभु, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार आपने दर्शन दिया था, मैं मां के गर्भ में था, और उस समय मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि बस अब एक बार यहां से निकाल दो, ये गंदगी में मैं फंसा हुआ हूं, ये गर्भ में अंधकार में बाहर निकालो, बस एक बार वचन देता हूं आपको, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन वो लिखते हैं, जन्म हुई या पौड़ी माया जाले, जन्म हुआ मां बाप की गोदी में खेलने लगा और ऐसा लगने लगा संसार लागी लो भाल, इस दुनिया बहुत अच्छी है, देखो मेरे माँ बाप कितना प्रेम करते हैं मुझे, और भी लोग आते हैं, जो भी आता है गोदी में उठाकर खिलाता है, बहुत अच्छा है, संसार लागी लो भाल। तो हम सब झूठे हैं, झूठे, क्योंकि जो भगवान को वचन दिया था गर्भ में कि एक बार बाहर निकालो, वचन देता हूं आपकी भक्ति करूंगा, फिर कभी कोई गर्भ धारण नहीं करूंगा, भूल गए, तोड़ दिया वो वचन हम सब ने। किस लिए? इस संसार के लिए, कुछ परिवार के लोगों के लिए। स्वजन पालन कोरी एक मने, वो कहते हैं कि ये मान लिया कि बस स्वजनों का पालन करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, भूली या तुम्हारे हरि, इसीलिए भूल गया आपको। कभी कभी हम लोगों को बड़ा विचित्र लगता है ना, जब ये बातें सुनते हैं कि क्या बहुत बोले जा रहे हैं, केवल कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, अरे और भी तो कुछ है जीवन में, और भी तो कुछ है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, ये केवल कृष्ण भक्ति कैसे हो सकती है, यही मोह है, भूल चुके हैं हम उस वचन को, इसीलिए बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो सबसे पहले प्रामाणिकता से भगवान की सेवा में लगना चाहिए हमें, भक्त के लिए पहली योग्यता शुद्धता से शुद्ध जीवन, प्रयास की करना चाहिए हमें शुद्ध जीवन जीने का, बहुत अशुद्ध जीवन जी चुके हम सब, और शुद्ध जीवन में कोई पाप नहीं हो, ऐसे जीवन में क्या गलती है, क्यों नहीं हम स्वीकार करते हैं? तो शुद्ध जीवन, और दूसरा योग्यता, निंदा करना बंद करना चाहिए। 75% हमारा जीवन निंदा करने में जाता है, हम सब निंदा करते हैं। अभी आप सब बाहर निकलेंगे, निंदा शुरू हो जाएगी, अभी तो आपको अवसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको चुप बैठना पड़ रहा है, अब हम निंदा कर रहे हैं तो वो अलग बात है। 75% जीवन हमारा निंदा में जाता, अरे यहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, हम सोचते हैं हम बड़े श्रेष्ठ हैं, दूसरे की निंदा, निंदा कौन करता है, निंदक व्यक्ति कौन है? निंदा वो व्यक्ति करता है जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है, क्या क्या श्रेष्ठता है हमारे पास, है क्या देने के लिए, कौन सी महान चीज है हमारे पास भगवान को देने के लिए? अनर्थ है भरे हुए, वही देते हैं भगवान को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य दूषित इच्छाएं, और क्या देते हैं भगवान को, है क्या हमारा? बहुत तुच्छ हैं हम भगवान के सामने। लेकिन कब पता चलता है, जब हम अपनी चेतना को उठाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम लोग प्लेन में जाते हैं, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में, जब नीचे होते हैं तो चीजें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देने लगती हैं, फिर वो जो हवाई जहाज होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, चीजें छोटी होती जाती हैं, फिर और ऊपर जाता है और छोटी हो जाती है, फिर और ऊपर जाता है, दिखती ही नहीं है, इतनी तुच्छ हो जाती है। तो जब हम अपनी चेतना को भक्ति के द्वारा ऐसे ऊपर उठाते जाते हैं, तब अपनी स्थिति का ज्ञान होता है हमें कि कितने शूद्र हैं हम, कितने पतित हैं हम। श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं होता तब, लेकिन जब तक नीचे रहते हैं, अपनी चेतना को नीचे रखते हैं, हम बड़े श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को। जीव ऐसा क्यों होता है, हम आपको बताते हैं। जीव तटस्था शक्ति है, माया देवी से श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण से निम्न है। अब आप इस दृष्टांत को देखिए, एक तरफ श्री कृष्ण है, एक तरफ माया देवी है, बीच में जीव है। माया से श्रेष्ठ है लेकिन श्री कृष्ण से निम्न है, शुद्ध है। तो जब जीव बहुत ज्यादा माया के निकट जाता है तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि वो है माया से। और वही जीव जितना ज्यादा कृष्ण के पास जाता है अपने आप को शूद्र मानता है, क्योंकि वो है। सही है? तो जितना ज्यादा हम माया के पास जाते हैं उतना ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मेरे से महान तो कोई है ही नहीं। आप में से कितने लोग सुबह जब दर्पण देखते हैं, स्वाभाविक है आप सब देखते होंगे, तिलक लगाने के लिए, बाल ठीक करने के लिए इत्यादि, तो कितने लोग दर्पण देखकर ये अनुभव करते हैं कितना पतित जीव है ये, कोई कहते हैं कितना पतित गिरा हुआ ये जीव है? नहीं, हम लोग तो करते हैं कि आज मुझसे सुंदर इस पृथ्वी पर कोई है ही। सही है ना? चाहे हम कैसे भी हों लेकिन हम बड़े श्रेष्ठ हैं। और आज मैंने बाल भी बड़ी अच्छी तरह से बनाए हैं, आज तो बाहर जाऊंगा तो निश्चित है कोई ना कोई कहेगा प्रभु क्या दिख रहे हो आज। और ये चाहिए हमको, यही हमारा आनंद है। हम कोई नया कपड़ा पहनकर आते हैं, कोई नई पैंट या नई धोती या माता जी लोग नई साड़ी या कुछ भी पहनकर, नया कुछ तो पहनकर आते, पूरे मंदिर में घूमते हैं, अगर कोई कुछ कहे नहीं तो लगता क्या हुआ, कुछ कमी हो गई है कुछ। और अगर पूरा घूमने के बाद भी कोई नहीं पूछे तो हम जाकर दूसरे की कुछ तो कपड़े की तारीफ करने लगते, प्रभु आपकी धोती अच्छी लग रही, तब वो अरे अरे आपकी भी बहुत अच्छी, नहीं है क्या? अरे इसीलिए तो पूछ रहा हूं, इतनी देर से कोई कह ही नहीं रहा। हमें भी चाहिए कि लोग गुणगान करें, हमें कुछ कहें, श्रेष्ठ माने। एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गए थे, IAS का इंटरव्यू, बहुत काले थे, शक्ल ठीक नहीं थी। तो जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, आप सोचिए टाई वाई लगाई हुई थी, सूट वूट पहना हुआ था, वो क्या परफ्यूम वगैरह मार कर आए हुए थे और बड़ी तैयारी करके घुसे। जैसे ही घुसे तो इंटरव्यू लेने वाले दूर से देखते ही बोला, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, अरे आप तो बड़े कुरूप हैं, वेरी अगली। बड़ा आप सोचिए, आप लोग कोई इंटरव्यू के लिए गए हैं, बड़ी तैयारी करके, कई दिनों से इंटरव्यू के लिए किया है, और आप सोच रहे हैं मुझे ये पूछेंगे वो पूछेंगे, और आपको प्रवेश करते ही कोई बोलता, अरे यार तुम तो बड़े बेकार दिखते हो, गंदे दिखते हो, आप क्या करोगे, कहीं डंडा ढूंढोगे, तेरे सर पे मार देता हूं, नहीं चाहिए तेरी नौकरी इत्यादि इत्यादि। तो उस व्यक्ति ने कहा, बहुत सुंदर उत्तर दिया और उस उत्तर के लिए वो सिलेक्ट भी हो गए, उनको चुन लिया गया। तो जैसे ही लोगों ने कहा तुम तो बहुत कुरूप, उसने बड़े आराम से कहा, लेकिन मेरी माँ कहा करती थी कि दुनिया का सबसे सुंदर बालक तू ही है। तो उसको बहुत अच्छी बात है तुमको सिलेक्ट कर। तो ऐसा है, हम सब अपने आप को मानते, ये माया है। अपने आप को जितना श्रेष्ठ मानते जाते हैं वही माया, जितना हम अपने आप को क्षूद्र पतित मानते हैं उतना श्री कृष्ण के निकट जा रहे हैं, वो भी सही से, हृदय से, बाहरी नहीं। कभी कभी वो भी बाहरी होता है, हम लोग आकर प्रणाम कर, प्रभु जी आप तो बड़े महान हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, और हृदय में सोचते मैं सब जानता हूँ तुम्हारा क्या है, केवल बाहर से बोल रहा हूँ, आपको स्वीकार मत करना, ऐसे नहीं, हृदय से। तो हमें प्रामाणिक जीवन जीना चाहिए, निंदा करना बंद करना चाहिए। दूसरी बात कि निंदा हम नहीं करें, जितना हो सके उतना हमें व्यक्ति में अच्छे गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। निंदा को सराहना से समाप्त किया जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं है जिसके अंदर एक भी अच्छा गुण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण में भी अच्छा गुण था, रावण आप जानते हैं उसमें बहुत अच्छे गुण थे। एक, वो बहुत सुंदर था, रामायण में वर्णन हुआ है, बहुत सुंदर था। हनुमान जी ने जब पहली बार देखा था तो हनुमान जी देखकर सोच रहे थे इतना सुंदर है, अगर प्रचारक बन जाता तो कितने लोगों का उद्धार हो जाता, अच्छा प्रचार करता था और मंत्रोच्चारण बहुत अच्छा करता था रावण, बहुत परफेक्ट मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों के उच्चारण में सही उच्चारण बहुत आवश्यक होता है, कभी कभी लोग सही उच्चारण नहीं करते हैं तो उल्टी हो जाती है बात। जैसे भागवत में वर्णन है कि इंद्र को मारने के लिए पुत्र के लिए पुत्र का यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र को मारने का पुत्र उत्पन्न हो, थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो गया, इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया, इंद्रहा। इसलिए शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, हम लोग को ध्यान से यूज करना चाहिए। जैसे एक शब्द का उदाहरण देते हैं, स्वजन, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में है, स्वजन पालन कोरी एक माने। तो स्व अपने लोगों को कहा जाता है, आत्मीय जन, कभी कभी लोग उसको स्वजन कह देते हैं। तो श्व मतलब कुत्ता, संस्कृत में श्वान या श्व कुत्ते को कहा जाता है। तो स्वजन मतलब कुत्ते लोग और स्वजन मतलब अपने लोग, देखिए एक शब्द से गर्व है। तो यही निंदा और प्रशंसा, हमें लोगों की प्रशंसा, एक अच्छा गुण ढूंढना चाहिए। क्यों नहीं ढूंढ सकते, हर एक व्यक्ति में एक अच्छा गुण है, बुरे गुण हो सकते हैं लेकिन अच्छा गुण। तो इसलिए निंदा बंद करना, अपना समय हम केवल भगवान की भक्ति, और कभी कभी गलत चीज दिख सकती है लेकिन उसको हमें जान लेना चाहिए कि भगवान और भक्त के बीच वो संबंध है। इसलिए जब तक हमारे अथॉरिटी ना हो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन चीजों को ना करें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें अपनी साधना को केवल एक रीति रिवाज नहीं बनाना चाहिए। रीति रिवाज जानते हैं कि सुबह उठना है, 16 माला जप करना है, ये एक नियम बन गया है बस। तो हम माला हाथ में लेते हैं, जप शुरू होता है और हमारा मन शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, 9 बजे कहाँ जाना है, 10 बजे फिर वो समाप्त होगा, और फिर आज संडे है, लेक्चर भी बहुत लंबा चलेगा, पता नहीं प्रसाद कितने बजे मिलेगा, और हमने सुना है कोई बोलने वाले बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है वो चुप ही ना हो, पता नहीं कितनी देर तक बोलते रहें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वो चलता रहता, वो अलग चल रहा है, ये अलग चल, एक रिचुअल हो गया कि हाँ करना है। लेकिन हमें चीज़ें हृदय से करनी चाहिए। एक उदाहरण, मंदिर साफ करना है, तो हम लोग कभी कभी फटाफट आते हैं, जल्दी जल्दी मारा साफ किया, ये एक रिचुअल है, एक रीति हुई, करना है बस। लेकिन मंदिर को बड़े ध्यान से साफ करना चाहिए, भगवान का मंदिर है, भगवान अब दर्शन करेंगे तो बड़ा स्वच्छ होना चाहिए। ये भाव, हमारा भाव महत्वपूर्ण है सेवा में, किस भाव से सेवा करते हैं, क्या मैं भगवान की सेवा उस तरह कर रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं, या क्या मैं भगवान की सेवा उस तरह कर रहा हूं जैसा भगवान चाहते हैं, ये दोनों में अंतर है। हम सेवा करते हैं उस तरह जैसे हम चाहते हैं, हमें ये अच्छा लगता है हम सेवा करते हैं, हमें वो अच्छी लगती है हम वो सेवा करते हैं। लेकिन सेवा ऐसी होनी चाहिए कि अगर सेवा के लिए हमें जहर भी पीना पड़े तो पी लेना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण रामायण में ही है, ताटका वध का। रामचंद्र जी पहला वध करने वाले हैं और वो भी एक स्त्री का, और शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, वृद्धों को मारना नहीं चाहिए। और अब श्री रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा स्थापित करने आए हैं, पहला ही तीर चलाने वाले हैं एक स्त्री के ऊपर। तो रामचंद्र जी थोड़ा सा सोच रहे थे, हिचक रहे थे कि अच्छा नहीं है, स्त्री को क्या मारे पहले ही, अभी तक कोई मारा ही नहीं असुर। विश्वामित्र जी कह रहे हैं ताटका का वध करो, रामचंद्र जी सोच रहे क्या करूं, करना चाहिए कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। तो वहां आचार्य बहुत सुंदर टिप्पणी देते हैं कि हमें गुरु के आदेश के सामने अपनी प्रसिद्धि या अप्रसिद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल आदेश पालन करना चाहिए। अगर उसके द्वारा मेरा अपमान भी होता है, मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलती, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गुरु का आदेश मैं पालन कर रहा हूं, क्योंकि विश्वामित्र उस समय उनके गुरु के स्थान पर थे, तो अगर मैं गुरु का आदेश का पालन करता हूं तो ये मेरे लिए जीवन की पूर्णता है। तो वो मुझे नहीं देखना है कि प्रसिद्ध होगा या नहीं, इसी भाव से हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की कि ये मेरा जीवन है, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे मान अपमान मिले या ना मिले, लेकिन अगर गुरु का आदेश है तो मैं उसका पालन कर रहा हूं और इससे ही प्रगति होगी। तो ये भाव हमारा होना चाहिए, इसीलिए साधना को हमें कभी भी एक रीति रिवाज नहीं बनाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है साधना हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन। भागवत में भगवान ने दो स्थानों पर एक महत्वपूर्ण बात कही है। वैसे भागवत जैसे जो ग्रंथ होते हैं वो एक बात को दोहराते नहीं है, लेकिन जब दोहराया जाता है तो मान लेना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में भी एक श्लोक को दोहराया गया, मन मना भव मत भक्तो। भगवान ने जब आदि भगवत गीता कह दी तब कहा, फिर जब पूरी कह दी फिर कहा, तो महत्व बता रहे थे कि ये सार है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो ऐसे ही भागवत में भगवान ने दो स्थानों पर कहा और वही श्लोक फिर से आया है, एक ही श्लोक दो बार आया है। भगवत गीता में तो थोड़ा बदल दिया भगवान ने अंतिम वाक्य, भागवत में नहीं बदला। और कहा किनको? दोनों श्रेष्ठ भक्तों को, एक गोपियों को और एक ब्राह्मण पत्नियों को। तो उन्होंने कहा कि कैसे मेरे प्रति प्रेम बढ़ सकता है, और उन्होंने ये बतलाया, उन्होंने कहा श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् मई श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मई भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण। भगवान कहते हैं कि चार चीजों से मेरे प्रति प्रेम बहुत बढ़ता है, न तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास रहने से नहीं बढ़ता। क्योंकि गोपियां आई थी उनके पास, ब्राह्मण पत्नी आई थी उनके पास, भगवान ने कहा वापस जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो आपके पास आए। तो भगवान ने कहा मेरे पास रहने से कोई प्रेम नहीं बढ़ने वाला, तो क्या करना चाहिए? श्रवणात्, श्रवण करना चाहिए भगवान की कथाओं को। दर्शनात्, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए। ध्यानात्, फिर उस रूप का ध्यान करना चाहिए। जब यहां से हम लोग जाएं तो सदैव ये रूप ध्यान में रहना चाहिए। आज राधा रानी ने क्या पहने थे, आज राधा रानी के गले में हार कौन से रंग का था, फूल कौन से थे, जगन्नाथ जी का फेटा कैसा लग रहा था, हार कौन से रंग के थे, कपड़े कौन से रंग के थे, बस यही चिंतन करते रहिए, शुद्ध हो जाएंगे, निश्चित है। लेकिन अगर ये चिंतन नहीं रहा तो जानते हैं आप सब क्या चिंतन होता है फिर हमारा, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये है ध्यान, ध्यानात् और मई भावोनुकीर्तनात्। जब अवसर मिले तो भावपूर्ण कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसा होना चाहिए इसके भी नियम दिए हुए हैं। श्री संप्रदाय में एक बहुत सुंदर वर्णन है कीर्तन का कि कैसा कीर्तन होना चाहिए। तो उसमें बताया है कि कीर्तन के समय हमारे जो पांव के तलवे हैं, मतलब नीचे का भाग, वो हमारे कमर तक लगना चाहिए। ऐसे कूद कूद कर कीर्तन होना चाहिए, ये उनके शास्त्रों में वर्णन है। तमिल भाषा में जो शास्त्र हैं जिनको अलवारों ने बनाया है, बद्धित किया है, तो अलवार आए थे, आप सब जानते हैं, उन्होंने कई चीजें हमें प्रदान की, तो दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। तो उसमें वर्णन है कि ऐसे कीर्तन होना चाहिए, मतलब भावपूर्ण कीर्तन। तो भगवान ने कहा चार चीजों से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, कौन कौन सी है कृपया बताइए। देखिए दो मिनट हुए सब भूल रहे हैं, अब जोर से बोली, पहला श्रवण, दूसरा दर्शन, तीसरा ध्यान, और चौथा भाव, नहीं भावपूर्ण कीर्तन। मय भावो न कीर्तनात्। तो इसलिए मंदिर आने का उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि मंदिर से श्री कृष्ण को हृदय में बिठा कर ले जाएं, तब तक जब तक अगली बार नहीं आते, फिर अगली बार आए फिर दूसरा रूप उनका ले जाएं। इसीलिए रोज ड्रेसिंग हम लोग इसीलिए करते हैं भगवान की, नहीं तो भगवान को वैसे ही रहने देते, रोज एक ही कपड़ा पहना देते, लेकिन इसीलिए करते हैं कि हमारा चिंतन बढ़ सके, हमारा ध्यान बढ़ सके भगवान का। तो आज आप लोग जब भगवान के दर्शन करें तो सब ध्यान से देखिएगा, क्या पहना है भगवान ने, माला किस तरफ है, हार कैसा है, भगवान ने फेटा पहना है या मुकुट लगा है, बांसुरी सोने की है या चांदी की है, और जो भी और चीजें देख सकते हैं, और उसको पूरा ध्यान दिन भर कीजिए। देखिए शाम को इतना अच्छा अनुभव होगा आपको कि आप हर रोज इसको करना चाहेंगे, इसी से हृदय शुद्ध हो जाएगा। और यही तो भक्ति है, सतत श्री कृष्ण का स्मरण, यही भक्ति है। हमें सतत श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए अपने शुद्धिकरण के लिए। तो इसलिए हम सबको जीवन में साधु बनना चाहिए। साधु अर्थात इंग्लिश में साधु को सेज कहते हैं, SAGE। तो उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं, सेज मतलब सिंपल, ऑस्टियर, ग्रेव और एनर्जेटिक। मतलब साधु होना मतलब बड़ा सरल जीवन होना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, सरल जीवन, और ऑस्टियर तपस्या होनी चाहिए। अब आप लोगों के लिए कितनी तपस्या, पिछले 1.5 घंटे से हम बोल रहे हैं और आप लोग केवल सुन रहे हैं, तो ऐसी तपस्या भगवान आपको और शक्ति दे, थोड़ा आप सुन लें, एक 10 मिनट की शक्ति प्रार्थना है। इतनी बड़ी तपस्या आप लोग कर चुके हैं, थोड़ी और करें। तो जीवन में सरल जीवन होना चाहिए, जितना जीवन सरल होता है उतना आनंद होता है। हम सुख ढूंढ रहे हैं, हम सुख किस में ढूंढते हैं, चीजों में। हम सोचते हैं कितना मेरे पास है वो चीज सुख देगी, ऐसा नहीं है। सुख उससे नहीं आता कि कितना आपके पास है, सुख उससे आता है कि जो आपके पास है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, उससे सुख आता है। क्योंकि हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट नहीं रहते। आज भगवान एक कार देता है हम संतुष्ट नहीं, दूसरी कार दे देता है हम फिर संतुष्ट नहीं, एक घर देता है हम संतुष्ट नहीं, दूसरा देता है एक संतुष्ट, प्रसाद के समय एक गुलाब जामुन मिलता है हम संतुष्ट नहीं, दूसरा मिल जाता है फिर भी संतुष्टि नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि सर्विंग करने वाले से कहीं थोड़ी पहचान लें, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए। संतुष्टि है ही नहीं इस जगत में। देखिए जो गांव में रहते हैं कितना सरल जीवन है, लेकिन संतुष्ट नहीं है, इसीलिए शहरों में आ जाते हैं, और खास करके वो पिक्चरें देखकर। और बंबई तो बड़ा प्रसिद्ध है पिक्चरों में, पता नहीं क्यों सब बंबई आते हैं। तो पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक गांव का लड़का बंबई पहुंचा, कुछ रहने को स्थान नहीं, खाने को नहीं, लेकिन कुछ ही देर में करोड़ों रुपया कमा लिया, गाड़ी हो गई, तो सारे गांव के लोग बंबई भाग कर आ जाते हैं। तो वहां संतुष्ट नहीं है अच्छे बड़े सरल जीवन में, शहर में आते हैं। और बंबई वाले सोचते हैं अमेरिका जाना चाहिए, तो बंबई वाले अमेरिका चले जाते हैं, संतुष्टि नहीं बंबई में, संतुष्ट नहीं तो बंबई वाले अमेरिका चले जाते हैं, और अमेरिका वाले वो चांद पर जा रहे हैं, उनको वहां भी संतुष्टि नहीं है। तो कोई कहीं संतुष्ट है ही नहीं। अब पता नहीं चांद वाले कहां गए हैं, वो तो हम लोग तो नहीं देख सकते, जान नहीं सकते, वो भी कहीं गए होंगे, वो वहां संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए इस जगत में संतुष्टि नहीं है, केवल भक्ति ही संतुष्टि प्रदान कर सकती है। तो जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तब हम सादा जीवन, तपस्वी का जीवन और गंभीरता भक्ति में या जीवन में लाएं, और उससे हमारा उत्साह बनेगा, तब हम भक्ति बड़े आराम से कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी सेवाओं को शुद्धता से, प्रामाणिकता से करें। दूसरा, निंदा करना बंद करें। तीसरा, कृष्ण का ध्यान सतत करने का प्रयास करें। चौथा, सरल जीवन बिताएं, बहुत गंभीरता से भक्ति को लें जीवन में, और उस सरल, क्योंकि हमें भगवान के धाम जाकर क्या करना। आप लोगों में से कितने लोगों ने सोचा जब नया मोबाइल खरीद रहे थे, ये सोचा क्या वो लोग धाम में नहीं चलता ये सब। भगवान के धाम जाके सरल जीवन जीना है, गायों की सेवा करनी है, गोबर उठाना है, भगवान करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं, है ना। आप में से कितने लोगों ने गायों की सेवा की है, हाथ ऊपर कीजिए। हमने एक सन्यासी से एक बार सुना था, बड़े वरिष्ठ सन्यासी हैं इस्कॉन के, उन्होंने कहा अगर आपने गायों की सेवा नहीं की है तो गोलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां करना ही यही है ना। तो हमें सरल जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि यहां हम अभ्यास करते हैं आध्यात्मिक जगत का। तो जहां सरल जीवन नहीं होगा तो फिर आध्यात्मिक जगत जाने का इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए उस इच्छा को उत्पन्न कीजिए। सरल जीवन, सादा जीवन, प्रभुपाद ने कहा है हमारा जीवन बड़ा सरल होना चाहिए, लेकिन हमारे विचार, हमारा उद्देश्य बड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो भक्तों के रूप में हमारा जीवन बड़ा सरल है, हमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य सबसे ऊंचा है, श्री कृष्ण की प्राप्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई एक आध प्रश्न हो जी प्लीज एक्सप्लेन। ग्रेव, टू बी ग्रेव। हाँ, गंभीर होना। कैसे गंभीर होना चाहिए? ऑफ कोर्स गंभीर होने का मतलब नहीं है कि ऐसे बैठ जाए ओम शांति 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 करते हुए, वो तो शांति कभी ऐसे आती नहीं है। हम एक बार जा रहे थे कहीं से, तो विवाह हो रहा था और विवाह में मंत्र पढ़ रहे थे और मंत्र के बाद वो बोल रहा था ओम शांति शांति शांति। तो हमने सोचा सारे जीवन के लिए अशांति होने वाली है इसकी, और उसको ओम शांति शांति कर रहे हो। तो गंभीरता मतलब ऐसे नहीं कि हम बाहरी दृष्टि से, गंभीरता मतलब हृदय की गंभीरता, जहां हम अपने जीवन को गंभीरता से लें कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये कोई खिलवाड़ के लिए नहीं मिला है, ये कोई खाने पीने में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, हमें मिला है भगवान की भक्ति के लिए। तो गंभीरता मतलब आज हम जितनी तीव्रता से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कल मुझे और तीव्रता से करना है, मुझे गंभीर होना है जीवन के प्रति। अगर मैं गंभीर नहीं हुआ तो जीवन चला जाएगा। हम सब देखते हैं कभी भी जा सकते हैं। परीक्षित महाराज को पता चला 7 दिन में जाने वाले हैं, तुरंत सब कुछ त्याग दिए भगवान का श्रवण। हमें नहीं पता हम कब जाने वाले हैं, आज जा सकते हैं, कल जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो ये गंभीरता होनी चाहिए कि समय नहीं है हमारे पास, बहुत थोड़ा जीवन है और इसी में हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। क्योंकि दूसरा जीवन पता नहीं, भक्तों का संग मिलेगा नहीं मिलेगा, श्री प्रभुपाद का आश्रय मिलेगा नहीं मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता। हो सकता है कहीं अमेरिका में जन्म ले लें। जैसे हम लोग जब जप करते हैं तो जो इच्छा जप के समय होती है वो पूरी होती है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों को जप करते समय। कोई ऐसी इच्छा मत ले आइएगा कि हाय भगवान, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो बाहर पाश्चात्य देश के लोग कितने सुंदर होते हैं, आपने मुझे सुंदर नहीं बनाया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान बोलेंगे एक थप्पड़ लगाएंगे, जाओ उधर जन्म लो, आओ आप बड़े सुंदर होकर जन्म लोगे, और फिर क्या करोगे? भगवान की भक्ति तो नहीं करोगे। तो इसीलिए गंभीरता किसने, इस विषय को समझने के लिए कि मुझे मेरा जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, बड़ा गंभीर हो जाऊं मैं, अब बाकी चीजें अपने जीवन को बदलूं। लोग सोचते हैं कि जैसा हमारा जीवन है वैसे ही उसको बनाए हुए हम भक्ति कर सकते हैं। नहीं, नहीं होती भक्ति, जीवन को बदलना पड़ता है। जीवन में कुछ बहुत कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं अगर भगवान को प्राप्त करना है। तो गंभीरता ये जानकर कि हम जो चीज प्राप्त करने जा रहे हैं वो कोई छोटी चीज नहीं है। तो किसी विशेष चीज को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष कार्य करने पड़ते। भक्तों के संग के प्रति गंभीरता, जब भक्तों के संग में आए तो ये भाव होना चाहिए कि मेरा भाग्य है मैं इतने सारे भक्तों के बीच में बैठा हूं। योग्यता नहीं है मेरी। दो चीजें होती हैं, एक न्याय और एक कृपा। तो हमें जानना चाहिए कि न्याय के अनुसार मेरे कर्म इतने बुरे थे पहले जीवन में, इस जीवन में और पूर्व जीवनों में कि मुझे तो एक भी भक्त का संग नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन ये शिला प्रभुपाद की कृपा है कि मुझे इतने सारे भक्तों का संग मिला। तो ये न्याय और कृपा, तो उसको गंभीरता से लेना, भगवान के नाम को गंभीरता से लेना, ये गंभीरता। ठीक है, हाँ जी सर। एक्चुअली वो बालक जान गया है जीवन के विषय में, इसलिए ज्यादा रो रहा हूँ। बोले कहाँ ला के पटक दिया मुझे, अभी मैं पता चला, अभी मैंने सुना मैं कहाँ पर हूँ। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है निकालो मुझे। हाँ यस बोलिए, सॉरी। सात दिन के पहले उनकी जिज्ञासा क्यों नहीं हुई भागवत सुनने की, राइट? और पहले जब श्राप मिल गया तभी क्यों जिज्ञासा? ऐसा नहीं है कि उनकी जिज्ञासा नहीं हुई, उन्हें तो बचपन से जिज्ञासा थी, वो श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, परीक्षा कर रहे थे, वो व्यक्ति जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो कहाँ है। जैसे ही बाहर आए वो परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला तब तक वो अपने कर्तव्य को कर रहे थे। मनुष्य को अपने कर्तव्यों को त्यागना नहीं चाहिए, लेकिन कर्तव्यों को करते हुए वो धर्म का पालन कर रहे थे। इसीलिए जब उन्होंने एक बैल को देखा, एक गाय को देखा और एक व्यक्ति को देखा जो उन्हें मार रहा था, तुरंत धर्म को रोकने का प्रयास किया, धर्म की स्थापना की प्रयास की। तो अपना कर्तव्य कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब समय नहीं है, तो उन्होंने तुरंत ऐसी जिज्ञासा की कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने भागवत ने की जिज्ञासा नहीं की, उन्होंने जाकर ऋषि मुनियों से प्रश्न किया कि वो व्यक्ति जो मृत्यु के कगार पर है उसको क्या करना चाहिए। तो कई लोगों ने अलग अलग बताया, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि भक्त हैं भगवान के महान। और फिर शुकदेव गोस्वामी आए और वही प्रश्न उन्होंने उनसे किया शुकदेव गोस्वामी से, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान के बारे में सुनो। उन्होंने कहा श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेषु ग्रहमेधिना। के सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः, लोगों के पास सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या सुनना चाहिए? भगवान की कथा, वासुदेव कथा। तो इसीलिए उन्होंने भगवान की कथा का वर्णन किया। तब हरि परीक्षित राज ने कथा को श्रवण किया। दूसरी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि वो भगवान की योजना थी, क्योंकि शुद्ध भक्त के जीवन में जो भी होता है वो भगवान की योजना, हमारे जीवन में जो होता है वो भगवान की योजना नहीं है। आप बोले मैं मंगल आरती में उठा नहीं, सोता रह गया, भगवान की योजना है, क्या कर सकते हैं, ये भगवान की योजना नहीं है। आइए, आज संडे है, मुझे मंदिर जाना था, लेकिन उसी समय कोई गेस्ट मेरे घर में आ गए, भगवान की योजना, क्या कर सकता, नहीं जाएंगे। तो हमारे जीवन में जो होता है वो भगवान की योजना नहीं है, लेकिन जो शुद्ध भक्तों के जीवन में होता है, देखिए शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका जा रहे हैं, कौन सोच सकता था कि आगे आने वाले 12 सालों में विश्वव्यापी आंदोलन को फैला देंगे पूरे विश्व में। केवल 10 सालों में, 12-10 सालों में हजारों शिष्य, 108 मंदिर, यहाँ हम लोग एक मंदिर बनाने के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक बना नहीं है, प्रभुपाद ने बना दिया, भगवान की योजना। तो जो शुद्ध भक्त के जीवन में होता है वो केवल भगवान की योजना। तो भगवान की योजना थी कि परीक्षित महाराज इतने समय राज्य करें, धर्म की स्थापना करें और फिर भागवत को प्रकट कराएं, इसीलिए उस समय की। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, उनका अगर एंट्री ना दें भौतिक प्रश्न है कि जब हम लोग जप करते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, वो तो आती ही रहेंगी, स्वाभाविक है, भौतिक जगत में है, तो अगर हम उनको ऊपर ध्यान नहीं दे या उनको आने नहीं दे तो उसका जप पर क्या प्रभाव होगा। पहली चीज, हम कृत्रिम रूप से इच्छाओं को रोक नहीं सकते मन में आने के लिए, या संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मन कोई दरवाजे की तरह नहीं है कि जिसको लॉक लगाए कोई एंट्री नहीं होगी, तो इच्छाएं आएंगी। लेकिन हम जब ज्ञान के द्वारा, जब भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो ज्ञान के द्वारा उसको आने से रोकते हैं, और दूसरा भक्तों के संग के द्वारा। ये स्वाभाविक है कि जब भक्तों के संग में बैठकर जब करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, अकेले करते हैं तो लगता अच्छा हो रहा है, वो होता नहीं है। तो ये अगर हम किसी भी प्रकार से अपने मन में भौतिक इच्छाओं को आने से रोक सकें तो निश्चित जप अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जप करने का लक्ष्य ही वही है। हम प्रयास कर रहे हैं अपने जप के द्वारा कि भौतिक इच्छाएं नहीं आए, लेकिन कृत्रिम तौर से नहीं। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद की एक शिष्या ने प्रभुपाद को लिखा कि प्रभुपाद, मैं जब जप करती हूँ तो मुझे एक लाल रंग की लाइट दिखाई देती है, क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, जप करते रहो, लाइट बंद हो जाएगी, ज्यादा चिंता मत करो। तो कृत्रिम तौर से नहीं कि मुझे ये हो रहा है, मैं वो देख रहा हूँ, नहीं। केवल जितना हो सके ज्ञान के आधार पर, भक्तों के संग के आधार पर, श्रवण के आधार पर, हमें भौतिक इच्छाओं को, सबसे पहले हमें नाम की शुद्धता को जानना चाहिए। हम जो नाम ले रहे हैं वो कितना शुद्ध है, आप सोचिए। हम एक उदाहरण देते हैं, अचानक यहाँ पर अभी कोई बहुत वरिष्ठ सन्यासी आ जाते हैं जिनको हमते बहुत शुद्ध है, तो हम कैसे उनके साथ आचरण करेंगे? वो पास में बैठे होंगे तो क्या हमको बोलेंगे, जरा थोड़ा दूर होके बैठो, जरा बाद में आना? या फिर वो आ जाएंगे तो हम बोलेंगे, जरा भैया साइड में हो जाओ थोड़ा? नहीं, हम तुरंत दंडवत करेंगे, उनको स्वागत करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति को जानते हैं। इसी तरह हमें नाम की स्थिति को जानना चाहिए कि सन्यासी तो ठीक है, ये तो वो सन्यासी हैं जो नाम लेकर शुद्ध हुए हैं, तो नाम कितना शुद्ध होगा, ये भाव हमें जानना चाहिए। तो जब इस भाव में हम नाम लेते हैं कि जो चीज मेरे हाथ में है ये भगवान का नाम बहुत शुद्ध है, मेरी कोई योग्यता नहीं है इसका स्पर्श करने की, प्रभुपाद की कृपा है, आचार्यों की कृपा है, मैं नाम ले पा रहा हूं, तो उसकी जानकर हम इन भौतिक चीजों को दूर कर सकते हैं। तो उसका प्रभाव ये होगा जब पर कि फिर हम नाम अपराध की अवस्था से नामाभास अवस्था अपने आप को ला सकते हैं। प्रभुपाद ने समझाया जब के समय तीन अवस्था होती हैं, नाम अपराध, अपराध युक्त नाम, अपराध मुक्त नाम और शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त नाम वो है जब हम अपराध करते हुए नाम लेते रहते हैं, अपराध मुक्त नाम जो नामाभास अवस्था कहलाती है, जहां हम अपराध नहीं करते लेकिन भगवान के प्रति प्रेम भी अभी नहीं है, और तीसरा है शुद्ध नाम, जहां भगवान से प्रेम करते हुए हम भगवान का नाम लेते हैं। तो हमारे जप पर यह प्रभाव होगा कि हम नामा अपराध अवस्था से कम नामाभास अवस्था तक आ सकेंगे, अगर बिना किसी भौतिक इच्छा के हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, माइक दीजिए बेटा, आप वैसे बोल दीजिए तब तक मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब हम लोग भक्ति में नहीं आते, पाप करते हैं, पहले भक्ति में आने के बाद भी वो पाप करने की इच्छा बहुत हो जाती है। अच्छा, वो आपने केवल कहा कि इच्छा होती है, ये नहीं कहा कि पाप करते हैं भक्ति में आके भी, वैसे हम लोग करते भी हैं। तो उसको कैसे समाप्त करना चाहिए? रामायण में एक प्रसंग है, भगवान श्री रामचंद्र ने मारीच और सुबाहु से युद्ध किया, सुबाहु को मार दिया लेकिन मारीच को मारा नहीं, उसको दूर भगा दिया, एक ही तीर मारा जिससे वो 100 योजन दूर समुद्र के पास जाकर गिर पड़ा समुद्र में, और सुबाहु को मार दिया। तो आचार्यों ने टिप्पणी दी, दो चीजें भगवान ने क्यों की, मारीच को क्यों नहीं मारा, सुबाहु को क्यों मार दिया? तो कहते हैं कि मारीच और सुबाहु हमारे द्वारा किए गए पापों के समान है, और भगवान जब हम समर्पण करते हैं भगवान को, तो भगवान भक्ति में आए हुए या भक्ति में आने से पहले पूर्व किए गए सारे पापों को नाश कर देते हैं, जैसे सुबाहु को मार दिया, खत्म कर देते हैं उन्हें, और आगे करने वाले भविष्य में होने वाले पापों को वो दूर भगा देते हैं, जैसे मारीच को भगा दिया। लेकिन कब करते हैं? जब हम उनकी शरण जाते हैं। तो हमारे लिए कि इच्छा ही ना आए, ये तो बहुत कठिन स्तर है कि जहाँ हमारे हृदय में पाप करने की इच्छा भी ना आए, जो पाप हम करते आए थे, क्योंकि कई जन्मों से करते आए हैं, अभी तक शुद्ध हुए नहीं हैं, तो वो चेतना बनी हुई, हमारा मन वही है। मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के समय हमारा सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, प्रकृति के निर्देशन में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, बस हम मरते नहीं हैं। तो मन वही है, तो हर जन्म में जो हमने पाप किए हैं वो सारे हमारे मन में हैं, अभी भले याद ना हो लेकिन सारे हैं यहाँ पर। हमारा मन बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, बहुत तेज, जन्मों जन्मों का स्टोरेज किया हुआ है। तो जब इतने पाप हमने किए हैं तो उसका प्रभाव स्वाभाविक है हमारी चेतना पर होगा, तो इसलिए हम पाप करने की हमारी प्रवृत्ति फिर से आती है, पाप करने के भाव आते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें तीव्रता से जप करना चाहिए। जैसे उदाहरण की मंदिर गंदा है तो इसको साफ कैसे कर सकते हैं, झाड़ू लगाकर, सरल है। तो मन गंदा है उसको साफ कर सकते हैं, हरि नाम लेकर। तो जितना हम हरि नाम लेंगे, लेकिन कैसा हरि नाम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक भजन लिखा है वैष्णव के, तो उसमें वो बोलते हैं कि तब हरि नाम कई तब, जो तुम नाम भी ले रहे हो अपने मन को बोल रहे हैं, दुष्ट मन तुम ही किसे रहो वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो, अपने आप को वैष्णव समझते हो, तो बताते हैं देखो तुम्हारा क्या भाव है। तो फिर वो कहते हैं कि तब हरि नाम कई तब, जो आप हरि नाम ले रहे हो भी झूठा है तुम्हारा, इसीलिए हृदय शुद्ध नहीं होता। हम सालों तक हरि नाम लेते रहते हैं, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, इच्छाएं बनी रहती हैं, क्यों, सही भाव में हरि नाम नहीं लेते। हमारी सेवा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना सेवा करने का भाव। भगवान भावग्राही जनार्दन है, इसीलिए हमें सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए। तो जब भी एक सेवा है तो अपने हृदय की इन इच्छाओं को निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी तीव्रता से जप, बड़ी गंभीरता से जप, ध्यान पूर्वक जप। आप में से जितने भी लोग जप करते हैं, हम सब, आप सब नहीं, हम सब, हम लोग सुनते नहीं हैं जप को। जप करने की सबसे सरल विधि प्रभुपाद ने बताई। प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जप के समय मन बहुत तंग करता है, क्या करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ध्यान नहीं देना है। प्रभुपाद ने कहा जप में दो ही चीजें हैं, एक तुम्हारी जिह्वा और एक कान। जो जिह्वा से बोलो उसको सुनो, कुछ आगे सोचने की आवश्यकता नहीं, मन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। और ऐसा सही है, अगर आप लोग रोज जो जप करते हैं, आप देखिए आप 108 बार जप करते हैं एक माला पर, उसमें से 20 बार भी नहीं सुनते। 20 बार 20 भी सुन लिया तो बहुत बड़ी बात है, 108 नामों में से आप 20 नाम भी नहीं सुनते, मतलब हम ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जप बड़े ध्यान से करना चाहिए, जिससे हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो, ये मूल अवस्था है। और साथ ही साथ ज्ञान, ये जो इच्छाएं हैं हमारे हृदय में, ये ग्रंथियों के समान हैं, गांठों के समान। और भागवत में कहा गया है, भागवत के पहले ही स्कंद में दूसरे अध्याय में कहते हैं, यद अनुध्या सिन्हा युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंति को विदस्तस्य को न कुर्यात कथारतिम। कि ये जो ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं हमारे हृदय में, जिनसे हम प्रवृत्ति, जो हमें इच्छा लाती है पाप करने की, यद अनुध्या सिन्हा युक्ता, इसको एक तलवार से काट देना चाहिए। यद अनुध्या सिन्हा युक्ता, सिन्हा यानी तलवार, युक्त यानी तलवार से युक्त होकर इसको काट, कर्म ग्रंथ बंधनम, ये जो कर्म ग्रंथि है इसको, बड़ी जटिल है, छिंदंती, इसको काट देता है वो व्यक्ति, कोविद, कोविद मतलब जो बुद्धिमान है, तो छिंदंती कोविद तस्य को न कुर्यात कथा रतिम। ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो श्री कृष्ण की कथा में रति नहीं रखता, क्योंकि ये कथा से ही स्मरण बढ़ता है, और स्मरण वो तलवार है जो हृदय की गांठों को काटती है। तो इसलिए जप अच्छे से करना, कथा में रुचि बढ़ाना, प्रायः जो भी कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद ने दिया है उसको करना, निश्चित है हमारे हृदय से ये ग्रंथियां निकल जाएंगी। तो ज्ञान लेना चाहिए भागवत भगवत गीता के आधार पर कि हमारे हृदय में क्या है, इसको कैसे निकालने हैं, और जप अच्छे से करना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी सर। प्रभु जी का प्रश्न है कि हमने बताया कि जब मृत्यु होती है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा चली जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, लेकिन भगवद गीता में लिखा है कि मृत्यु के बाद पाप जो करता है उसको दंड मिलता है, तो दंड कहाँ मिलता है? वो तो शरीर से दूसरे शरीर में चला गया। हमने जो बताया था ये एक नियम था, अब उसका विस्तार, एक सिद्धांत होता है और उसका विस्तार होता है। ये निश्चित है कि आत्मा शरीर को छोड़ती है मृत्यु के समय और सूक्ष्म शरीर के साथ वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब ये दूसरा शरीर कौन सा हो सकता है? पहला किसी मनुष्य का शरीर हो सकता है, किसी पशु का शरीर हो सकता है, लेकिन अगर आपके कर्मों के अनुसार आपने बहुत पाप किए हैं और आपको एक पशु शरीर में जाना है, मान लीजिए कुत्ते के शरीर में जाना है, आपने इतना बेकार काम किया कि आपको कुत्ता बनना है, तो अगर सीधे आपको कुत्ते के शरीर में भेज दिया जाए तो आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मनुष्य की तरह रहने की आदत है, तो आप वहां पर खड़े होने का प्रयास करोगे, खड़े नहीं हो, भौंकने की आदत नहीं है आपको तो भौंक नहीं पाओगे, मुंह से खाने की आदत नहीं, खा नहीं पाओगे, तो इसीलिए आपको नरक में भेजा जाता है। और नरक क्या है? प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर, जहां ट्रेनिंग दी जाती है कुत्ता बनने की, मार मार के कुत्ते के शरीर में डाला जाता है, मारा जाता है, बोलो मैं कुत्ता हूं, अरे नहीं मैं तो मनुष्य, बोलो कुत्ता हूं, अरे नहीं मैं मनुष्य, फिर मारते, तो जब तक बोलता नहीं कि हाँ मैं कुत्ता हूं, जान नहीं लेता, उसकी चेतना में बैठ नहीं जाता कि मैं कुत्ता हूं, उसको शरीर में नहीं भेजा जाता, क्योंकि जब उसकी चेतना में बैठ जाता है मैं कुत्ता हूं, तब शरीर में भेज दिया जाता है तो बड़ा आनंद में रहता है। कुत्ता कभी इच्छा नहीं करता कि काश एक दिन मैं मनुष्य बन जाऊं, वो तो ये इच्छा करता है कि मनुष्य एक दिन कुत्ता बनना चाहिए। तो नरक है, लेकिन नरक वो स्थान है जहां पाप के लिए हमें सजा मिलती है। भागवत में पांचवें स्कंद में कई नरकों का वर्णन हुआ है, अलग अलग प्रकार के, और अलग अलग दंड दिए हैं कि अगर आप ये कार्य करते हो तो इस नरक में जाना पड़ता और ये दंड होता, ये कार्य करते हो किसी को धोखा दिया तो ये नरक है, किसी के साथ गलत काम किया तो ये नरक है, किसी का पैसा लूटा तो ये नरक है, सब दिया है भागवत में, बड़ा स्पष्ट, सबको पढ़ना चाहिए, कम से कम बंद करेंगे जाना तो इसके द्वारा नरक जाते। तो नरक क्या है? वहां दंड मिलता है, दंड के साथ साथ आपको प्रशिक्षण दिया जाता है अगले शरीर में जाने का, उसके बाद फिर शरीर में भेज दिया जाता है। वहां आपके पूरे कर्म समाप्त नहीं होते, क्योंकि प्रश्न यह आ सकता है कि मैंने पाप किया, मुझे दंड मिला नरक में, अब मुझे पशु योनि में क्यों भेजा जा रहा है? नहीं भेजना चाहिए, मेरा तो समाप्त हो गया कर्म। जैसे जेल में भेजा, जेल से छूटने के बाद फिर आप दंड दे रहे हो, ये तो संभव नहीं। तो वहां पूरे कर्म समाप्त नहीं होते, थोड़े कर्मों के लिए दंड मिलता है और फिर प्रशिक्षण मिलता है, फिर आप कुत्ते की योनि में या जिस योनि में भेज दिए जाते हैं। तो लेकिन तब भी शरीर लेना पड़ता है, उसको यातना योनि कहते हैं। तो यातना शरीर दिया जाता है, शरीर तो मिलता ही है लेकिन यातना शरीर। तो यातना शरीर क्या होता है? बहुत बढ़िया शरीर है यातना का, आपके शरीर को फाड़ देते हैं एकदम पूरा, यू नो, यहाँ तो कोई मेडिकल लाइन से है, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है ना, आपके शरीर को फाड़ देते हैं, वहां से जो अंदर आंत वगैरह है वो खींच खींच के निकालते हैं आपके सामने, और आप देखते हो लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती। इस शरीर में अगर आपका ऐसा किया जाए तो तुरंत मर जाओगे खून निकलकर, उस शरीर में ऐसा नहीं होता। बहुत बढ़िया शरीर है, यातना के लिए ही मिला है। आपके शरीर को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े किया जाता, आप देखते रहते हो लेकिन मृत्यु नहीं होती, दर्द होता है, दर्द वही होता है, मृत्यु नहीं होती। फिर आपकी आंखें खींच ली जाती, भागवत में लिखा है कि आंखें खींच ली जाती और वो व्यक्ति देखता है आंखें जाते हुए, आंखें चली गई लेकिन देख रहा आंखें चली गई, कष्ट होता है लेकिन मरता नहीं। तो इतना बढ़िया शरीर है, केवल कष्ट होता है, मृत्यु नहीं होती, इसीलिए यातना शरीर है। खैर आप बताते हैं, आप ये सब चिंता मत कीजिए, आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, यमराज ने स्वयं वरदान दे रखा है, कंठी पहने रहिएगा, कभी निकालिएगा मत, क्योंकि यमराज ने कहा है छठे स्कंद में, अपने दूतों को आदेश दिया है कि जो लोग भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, उनके पास जाना भी नहीं कभी, इसलिए आपको चिंता नहीं है। फिर भी ज्ञान के लिए ठीक है, दूसरों को बताने के लिए। हमने अभी बताया कि भगवान सुबाहु का वध करते हैं, तो आपने इससे पहले निश्चित हम सब ने किए हैं बुरे काम और बड़े जोर से किए थे, ऐसा कोई नहीं। तो भगवान को समर्पण करेंगे तो भगवान एक तीर में, भगवान क्या नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हो कि पाप समाप्त नहीं हो सकते, मतलब आप भगवान की भगवत्ता पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि भगवान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, भगवान के लिए कितनी देर है, एक क्षण में हमारे पाप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उनको जाकर बोलते नहीं है कि भगवान कीजिए, आप ही एक मेरे आश्रय हैं, आप कीजिए। जिस दिन बोल देंगे उस दिन कर देंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, माइक दीजिए इन यहाँ आगे। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, माइक चालू नहीं। हाँ बोलिए। सरलता की परिभाषा केवल इतनी है कि ऐसी जीवन शैली जो हमें श्री कृष्ण की ओर ले जाए, बस वही सरलता है। क्योंकि बाकी सारी जीवन शैलियां जो आपको कृष्ण से परे ले जा रही हैं, वो सरल जीवन नहीं है। तो चाहे आप जैसे पुंडरिक विद्यानिधि, पुंडरिक विद्यानिधि सारे ऐश्वर्यों के बीच में थे। अगर आप जो वर्णन है अगर आप सुने कि क्या कहता, लोग चमर हिला रहे हैं, दास दासियां खड़े हैं, ऐश्वर्यशाली वस्त्र पहने हैं, बहुत अच्छे बिस्तर पर लेटे हैं, थूक दान पीक दान सारा इधर उधर लोग लेकर खड़े हुए हैं, इत्यादि बहुत सारा वर्णन है। तो वो देखकर तो लग ही नहीं सकता कि ये सरल जीवन है, ये क्या सरल जीवन हो सकता है। लेकिन उनका मन श्री कृष्ण में, वो आसक्त नहीं थे उस सब चीजों में। जैसे ही श्री कृष्ण के बारे में सुना, अहो बकीयम सनकाल कूटम, सारे कपड़े उपड़े को फाड़ दिए, कोई आसक्त नहीं थे, ध्यान भूल गए अपनी बाहरी चेतना को। तो सरल जीवन ये है कि जहां हमारे पास सुविधा हो लेकिन हम सुविधा से आसक्त ना हो। श्री प्रभुपाद ने दिखलाया, प्रभुपाद प्लेन में गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में गए, मर्सिडीज उस समय पर, रोल्स रॉयस, क्या नहीं प्रभुपाद ने यूज किया, लेकिन आसक्त नहीं थे। जब श्री प्रभुपाद को एक बार एक भक्तों ने बहुत ऐश्वर्यशाली आसन प्रदान किया, व्यासासन, प्रभुपाद आए तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद आपके लिए बनाए, प्रभुपाद ने देखा बहुत ऐश्वर्यशाली था वो, और प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। तो भक्तों ने पूछा क्या हुआ प्रभुपाद, आपको अच्छा नहीं लगा या? प्रभुपाद ने कहा नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको देख कर मुझे मेरे वृंदावन के राधा दामोदर के दो कमरे याद आ रहे हैं। सरल चीज ये भाव था हृदय का, ये सरलता है कि जहां सारा ऐश्वर्य है, लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो व्यक्ति आसक्त नहीं है, हाँ उसका उपयोग भगवान की सेवा में करता है, वो सरलता। तो हमारे लिए भक्तों के लिए यही सरलता। सरलता मतलब ये नहीं कि आप पेड़ के नीचे बैठकर जप करो, छह गोस्वामियों ने किया हम भी छह वहां करेंगे, नहीं, वो सरलता नहीं है, वो तो दिखावा हो जाएगा। छह गोस्वामी ने किया क्योंकि उनका वो स्तर था। इसलिए सरलता का एक ही मापदंड है, हम कितना भौतिक चीजों से, सुविधाओं से अनासक्त हैं और कितना श्री कृष्ण से आसक्त हैं, ये सरल जीवन है। ठीक है, अभी समय का, हाँ ओके, एक आखिरी प्रश्न।
हम लोग भक्ति काल में आ गए, उसके बाद इस फॉर्म में बोलते हैं, जो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, जैसे कि अन्न है, फल है, तो भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। लेकिन अगर बाहर का कोई व्यक्ति हमको कुछ खाने की वस्तु देता है और हम उसको स्वीकार करके खा लेते हैं, तो क्या ये पाप होगा और उस पाप का फल हमको भोगना पड़ेगा?
हम लोग अभी साधक अवस्था में हैं। साधक अवस्था मतलब वैधी भक्ति का पालन करना, और वैधी भक्ति मतलब कड़ाई से विधि विधानों का पालन करना, उसे वैधी भक्ति कहते हैं। भगवानुग भक्ति का स्तर अलग है। प्रभुपाद एक समय ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन अलाहाबाद स्टेशन पर रुकी, प्रभुपाद ने कहा जाके समोसे लेकर आओ, यहाँ समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। प्रभुपाद रह चुके थे ना अलाहाबाद में, उस समय शिष्य थे उनके, अमेरिकन शिष्य उनके साथ थे ट्रेन में। प्रभुपाद ने कहा लेकर आओ, तो शिष्य जाकर लेकर आए। और फिर नियम ये था कि उस समय भी प्रभुपाद को ऑफर करते थे, तो एक शिष्य ने क्या किया कि जैसे मंदिर में ऑफर करते थे जब प्रभुपाद नहीं होते थे, तो उन्होंने प्रभुपाद का एक चित्र रखा, उसके सामने समोसे रखे और घंटी बजाने लगे आँख बंद करके। और प्रभुपाद ने देखा, तो जब उन्होंने आँख बंद की, प्रभुपाद ने सारे समोसे उठा लिए और सबको बांट दिए। और ये भक्त वो घंटी बजाता रहा, और फिर उसने आँख खोली तो देखा समोसे गायब, मतलब क्या हो गया, भोग लगा रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा रहे जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो फोटो को क्यों भोग लगा रहे। तो और बेचारा वो घंटी बजाते बजाते समोसे भी खत्म हो गए, उसको मिला नहीं एंड में। तो ये प्रभुपाद ने किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद स्टैंडर्ड कर रहे थे कि हम भी समोसे खरीद कर खा सकते हैं बाहर से, नहीं, वो उनका स्तर था। तो साधक अवस्था में हमें बड़ी कड़ाई से नियम का पालन करना चाहिए, तब हम अपने आप को शुद्ध कर सकेंगे और उस स्तर पर पहुंच सकेंगे। तो आपको अगर कोई भी बाहर कुछ देता है और आप अगर उसको बड़े प्रेम से समझाते हो कि हम लोग कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं जिनके अधीन हमें ये सब चीज़ें खाने की अनुमति नहीं है, और हम बिना भगवान को अर्पण किए कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं, और ऐसा जीवन भी होना चाहिए, ये दिखावा नहीं कि केवल उस व्यक्ति को बोला और फिर पीछे जाकर रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे बताते हैं तो लोग आदर करेंगे, तब लोग उसको स्वीकार करेंगे। हम लोगों के साथ कई बार होता है, हम जाते हैं कहीं पर तो लोग बड़े प्रेम से सब लेकर आ जाते हैं, नहीं प्रभु जी आपको लेना ही पड़ेगा, तो हम बड़े प्रेम से कह देते हैं कि हम कुछ नियम का पालन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों को ये अनुमति नहीं है, हम लोग केवल भगवान को वो भी अच्छी तरह से मंदिर में नियम से अर्पण करे हुए हम लोग खाते हैं, तो फिर लोग आदर करते हैं। लेकिन हमें अपने नियमों पर बड़ा कड़ा रहना चाहिए। जब हम नियमों में ढीले हो जाते हैं तो लोग भी जान लेते हैं ये कोई भक्त नहीं, ये सब करते हैं ये लोग, बाहर भी खाते हैं इधर भी खाते हैं, फिर व्यासासन पर बैठकर बोलते हैं कि भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं, बड़ी कड़ाई से हमारे नियम पालन होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान ने बहुत शक्ति आपको प्रदान की, इतना समय आपने हमें झेला। आगे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसी ही शक्ति प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें, और अंततः श्री श्री राधा गिरधारी जी अपने चरण कमलों में हम सबको स्थान दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।